हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। कमरे में आते ही सुनैना ने इधर उधर देखा। सामने सोफे पर बैठे आदित्य को देखते ही उसने बाकी सब कुछ भूलकर सीधा आदित्य की ओर भागकर उसे कसकर गले लगा लिया। आदित्य को स्वस्थ देखकर सुनैना को बहुत अच्छा लगा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वो उस वक्त काफी भावुक थी। आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भरकर गले लगा लिया। वहां पास खड़े दो लोगों में से एक आदित्य का हेड बॉडीगार्ड था और दूसरा उसका सीक्रेट असिस्टेंट। वे दोनों समझदार थे और गले लगे जोड़े को देखकर दूसरी ओर देखने लगे। आदित्य ने ये नोटिस किया और सुनैना के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, रिलैक्स सोना, आई एम ऑल्सो राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम प्लीज इस तरह से मत रो। सुनैना उससे दूर हटकर उसके सामने खड़ी हो गई। ओह सॉरी सॉली, मैंने देखा नहीं और मैं रो नहीं रही हूँ आदित्य, ये खुशी के आंसू हैं, तो बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, बट प्लीज इस तरह से गायब मत हुआ करो। सुनैना की शिकायत सुनकर आदित्य ने सफाई दी, हाँ मुझे पता है, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था सोना, लेकिन ये सब जरूरी था और मैंने अपनी मर्जी से ये नहीं किया है, बताओ अरविंद। अरविंद नाम लेते हुए आदित्य ने ब्लैक कोट सूट पहने आदमी की ओर देखा। वो आदित्य से भी लंबा चौड़ा था और उसका सिक्योरिटी हेड था, क्योंकि कोट की जेब पर एक सिक्योरिटी एजेंसी का लोगो दिख रहा था। इतने महीनों में सुनैना ने उस आदमी को पहली बार देखा था। उसने दूसरे आदमी को भी देखा। उसने ब्लैक फॉर्मल पैंट के साथ व्हाइट फॉर्मल शर्ट पहनी थी। उसके हाथ में फाइल, मोबाइल और आईपैड था। उसने चश्मा लगा रखा था और वो पहले वाले आदमी जितना सीरियस नहीं लग रहा था। सुनैना उन दोनों को पहली बार देख रही थी, इसलिए कन्फ्यूज होकर आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य ने उनका परिचय कराते हुए कहा, ऐसे कन्फ्यूज होकर मत देखो सोना, ये दोनों मेरे बहुत ही खास और ट्रस्टवर्दी वर्कर हैं। ये नदीम है, मेरा असिस्टेंट, और ये अरविंद है, मेरी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का हेड। मेरे डैड के टाइम से ये दोनों हमारे लिए काम करते हैं। ब्लैक कोट वाले आदमी ने कहा, यस मैम, सर ठीक कह रहे हैं, इस बार उन्हें ऐसा करना पड़ा क्योंकि मैंने ही उन्हें ऐसा करने को कहा था। उनके जान पर खतरा है और कुछ दिन उन्हें छिपकर रहना होगा। सुनैना ने नोटिस किया कि उसके बोलने का तरीका बहुत प्रोफेशनल और रोबोटिक था, शायद वो इसी तरह ट्रेंड था। दूसरे लड़के ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, हेलो मैम, नाइस टू मीट यू, हम थोड़ी अलग सिचुएशन में मिल रहे हैं, बट सर को लेकर आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। इतना बोलते हुए उसने अपना चश्मा ठीक किया। उन दोनों की बातें सुनकर सुनैना ने धीरे से सिर हिलाकर हेलो कहा और फिर से आदित्य की ओर देखने लगी। आदित्य ने उसे बड़े काउच पर बैठने को कहा। सुनैना चुपचाप वहां बैठ गई। आदित्य सुनैना के आने से पहले जो बात कर रहा था उसे फिर से जारी रखने लगा। सुनैना को उनकी बातें ज्यादा समझ नहीं आ रही थीं, लेकिन बात आदित्य की सुरक्षा से जुड़ी थी, इसलिए वो चाहती थी कि पहले वो काम हो जाए, वो अपने सवाल बाद में भी पूछ लेगी। नैना जब नींद से जागी तो उसे एहसास हुआ कि वो अक्षत के बंगले में नहीं बल्कि अपनी बहन सुनैना के घर में है। वो कमरे से बाहर आई और सुनैना को आवाज लगाने लगी। हॉल में नैना की आवाज गूंजी, सोनू सोनू कहाँ है तू? लेकिन सुनैना घर पर नहीं थी, नैना को ये नहीं पता था। वो अपने कमरे से निकलकर हॉल में आ गई और सुनैना का नाम लेते हुए आवाज लगा रही थी और इधर उधर देख रही थी। उसे सुनैना नहीं दिखी, लेकिन स्वीटी दिखाई दी। उसने स्वीटी की ओर देखा, लेकिन स्वीटी ने पहले ही कहा, क्या हुआ दी, आप इस तरह से भाभी को आवाज क्यों लगा रही हो, वैसे वो अभी घर पर नहीं है। नैना ने हैरानी से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ चली गई सोनू? स्वीटी ने जवाब दिया, इतनी भी सुबह नहीं है दी, दोपहर के 12 बजने वाले हैं, भाभी इम्पोर्टेंट काम से गई हैं, मेरा मतलब है भैया के बारे में न्यूज। नैना घबरा गई, क्या हुआ जीजू को, सब कुछ ठीक तो है ना स्वीटी, प्लीज मुझे पूरी बात बताओ, देखो अगर तुमने मुझे भी कहा है तो प्लीज मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह मानो और मुझे सब कुछ बताओ। स्वीटी ने आराम से कहा, हाँ ठीक है मैं बताती हूँ, लेकिन आप पहले यहाँ आराम से बैठिए और बताइए अब आप कैसा फील कर रही हैं, क्योंकि रात को तो आपकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी, आप रो भी रही थी, बताइए क्या हुआ है। नैना थोड़ी निराश होकर बोली, पता नहीं क्या हुआ है, ठीक तरह से मुझे भी कुछ नहीं पता चल रहा है, मेरी लाइफ का जैसे मजाक बन गया है, जो कुछ भी कल हुआ अगर वो सब सच है तो इसका मतलब मेरे बॉयफ्रेंड अक्षत ने मुझे धोखा दिया, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अक्षत मुझे धोखा देगा, वो बिल्कुल भी ऐसा इंसान नहीं लगता। लेकिन स्वीटी सीरियस होकर बोली, अगर आपको इतना ही विश्वास है तो फिर आप कैसे इतनी जल्दी इस बात को मान लेती हैं कि अक्षत सर ने आपको धोखा दिया? वैसे मैं उनसे कभी पर्सनल नहीं मिली, लेकिन मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और वो सच में काफी अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें सोशल मीडिया पर फॉलो भी करती हूँ। नैना अक्षत के साथ बिताए पलों को याद करते हुए बोली, हाँ, वो सच में बहुत ही अच्छा इंसान है। आज तक ऐसा कुछ भी मुझे उसके बारे में देखने, जानने, सुनने को नहीं मिला और मैं तो उसके साथ बीतती हूँ, मतलब रहती थी। नैना के चेहरे पर मायूसी साफ दिख रही थी। स्वीटी ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए उसे तसल्ली दी, आप उदास मत हो दी, अगर आप दोनों का साथ होना लिखा है तो आप दोनों फिर से साथ हो जाओगे। और वैसे भी जरूरी नहीं है कि वो लड़की सच बोल रही हो, आपको एक बार अक्षत सर की बात भी सुननी चाहिए थी। मुझे लगता है आप उनसे बात किए बिना ही यहाँ आ गई थी। नैना ने उदासी से सिर हिलाया। स्वीटी ने फिर से समझाया, यही तो गलती करते हैं सभी लोग रिलेशनशिप में, जो भी इंस्टेंट दिखाई देता है उसे ही सच मान लेते हैं और दूरियां बना लेते हैं आपस में, जिससे गलतफहमी गहरी हो जाती है। स्वीटी की समझदारी भरी बातें सुनकर नैना सोचने लगी। उसे लगा कि रात को उसने ज्यादा रिएक्ट कर दिया, उसने अक्षत से बात नहीं की, उसकी बात नहीं सुनी और उसके घर ना जाकर सीधा सुनैना के घर आ गई। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन वो ये भी सोच रही थी कि अगर अक्षत की एक्स रागिनी की बातें सच निकली और वो अक्षत के बच्चे की माँ बनने वाली हो तो वो क्या करेगी। इस सच के बाद नैना बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि वो अक्षत से हमेशा के लिए दूर नहीं होना चाहती। कन्फ्यूजन में उसने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया और बोली, आह, मुझे अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं और क्या नहीं। लेकिन स्वीटी, तो मुझे पहले ये बताओ, सुनैना कहाँ है और तुम जीजू के बारे में क्या बता रही थी, वो दोनों ठीक तो है ना? नैना ने जानबूझकर बात का टॉपिक बदला, क्योंकि वो फिलहाल अक्षत के बारे में नहीं सोचना चाहती थी। नैना के दोबारा पूछने पर स्वीटी ने उसे पूरी बात बता दी, आदित्य का एक्सीडेंट और सुनैना का परेशान होना और फिर सुनैना का एक्सीडेंट लोकेशन पर जाना। स्वीटी को जितना पता था उतना उसने नैना को बताया। नैना के साथ बात शेयर करके स्वीटी को भी हल्का लगा, क्योंकि वो अकेली ही परेशान थी। स्वीटी की बात सुनकर नैना ने फिर से सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, इतना कुछ हो गया कल से, शायद कल का दिन ही मनहूस था, मेरी लाइफ भी अपसाइड डाउन हो गई। और सुनैना, आई होप जीजू को कुछ भी ना हुआ हो और वो बिल्कुल ठीक हो। स्वीटी ने हामी भरी, हाँ भैया बिल्कुल ठीक होंगे, मुझे भी यही लगता है, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा। नैना सोचते हुए बोली, आई थिंक हमें भी चलकर देखना चाहिए, यहाँ इस तरह बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा ना? स्वीटी ने कन्फ्यूज होकर पूछा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? उसे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वो ज्यादातर इंस्टीट्यूट से घर और घर से इंस्टीट्यूट ही जाती थी। आदित्य और सुनैना के पीछे घर से निकलने में भी वो घबरा रही थी। नैना ने उसे तसल्ली दी, चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, फिर कहीं तो चलेंगे ही। स्वीटी जाना चाहती थी, लेकिन उसने नैना को देखा, उसकी हालत ठीक नहीं थी, रोने से उसके चेहरे पर सूखे आंसुओं के निशान थे। वह अभी भी पार्टी वाले कपड़ों में थी और उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ लग रहा था, शायद भूख की वजह से। स्वीटी ने कहा, लेकिन रात से आपने कुछ खाया भी नहीं है और अभी आप सो कर उठी हैं, आप पहले नाश्ता कर लीजिए और रेडी हो जाइए, तब तक मैं भी रेडी होकर आती हूँ, फिर हम साथ में निकलते हैं, और निकलने से पहले मैं एक बार भागी को फ़ोन भी कर लूँगी। नैना उसकी बात मान गई, क्योंकि उसे भूख लगी थी। हाँ ठीक है, लेकिन अगर वो हमें आने के लिए मना करे तो उसकी बात बिल्कुल मत सुनना, क्योंकि अगर हम यहाँ बैठे रहेंगे तो हमें ज्यादा टेंशन होगी। स्वीटी मुस्कुराकर बोली, हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ दी। क्रमशः